एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी दुनिया की कह सकते हैं गहराई में उतर रहे हैं जिससे हम सब रोजाना रूबरू होते हैं।
हाँ, पर शायद उसकी असली कहानी, उसकी ताकत को पूरी तरह नहीं समझते। हम बात कर रहे हैं संख्याओं की, नंबर्स की।
बिल्कुल, और हमारी इस यात्रा के गाइड होंगे पीटर एम हिगिन्स। उनकी दो किताबें हैं, नंबर्स मैथमेटिक्स एज द यूनिवर्सल लैंग्वेज और नंबर्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इन्हीं के विचारों से हम प्रेरणा लेंगे।
पर सवाल ये उठता है कि स्कूल की गणित की किताबों से बाहर निकलकर ये संख्याएं हमारे लिए आज क्यों मायने रखती हैं? मतलब ठीक है, हिसाब किताब के लिए जरूरी है, पर उससे आगे?
यही तो दिलचस्प बात है। हिगिन्स हमें दिखाते हैं कि संख्याएं सिर्फ जोड़ने घटाने या हिसाब किताब का जरिया भर नहीं है।
अच्छा।
हाँ, वे असल में इस दुनिया, इस ब्रह्मांड को समझने और बयान करने की एक बुनियादी भाषा है। और ये कोई ऐसी भाषा नहीं जो बस लिख दी गई और खत्म। नहीं,
मतलब ये बदलती रही है।
हाँ, ये इंसानी जरूरतों और समस्याओं को सुलझाने के लिए लगातार विकसित हुई है।
बिल्कुल, तो आज हमारा मकसद यही है कि गणित के डर को थोड़ा कम करें और उसकी छुपी हुई खूबसूरती, उसकी तर्क शक्ति और हमारे जीवन में उसकी अहमियत को उजागर करें।
हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर सिस्टम जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं आखिर बना कैसे और क्यों।
और एक बड़ा सवाल जिस पर हिगिन्स सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हमने संख्याओं को खोजा है जैसे कोई नया द्वीप खोजते हैं, या हमने उन्हें बनाया है जैसे कोई औजार बनाते हैं? ये सवाल काफी गहरा है।
चलिए इस सवाल को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले जरा पीटर एम हिगिन्स की बात कर लें। ये हैं कौन आखिर?
हाँ, पीटर हिगिन्स जो है वो एसेक्स विश्वविद्यालय यूके में गणित के प्रोफेसर हैं, और उनकी विशेषज्ञता गणित की कुछ गहरी शाखाओं में है जैसे समूह सिद्धांत यानी ग्रुप थ्योरी और कॉम्बिनेटोरिक्स। सुनने में भारी लगता है।
हाँ, लगता तो है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। उनकी असली खासियत ये है कि वे इन मुश्किल लगने वाले गणितीय विचारों को बहुत ही सरल, साफ और दिलचस्प तरीके से आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
अच्छा, ये तो बढ़िया बात है।
जी हाँ, उन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी हैं जो गणित को उत्सुक लोगों के लिए खोल देती हैं, जैसे मैथमेटिक्स फॉर द क्यूरियस।
मतलब वो अकादमिक गहराई और सरल भाषा के बीच एक अच्छा संतुलन बना लेते हैं।
बिल्कुल, उनका जुनून साफ झलकता है कि भाई गणित सिर्फ कुछ जीनियस लोगों के लिए नहीं है, इसकी सुंदरता और इसका आश्चर्य हर कोई महसूस कर सकता है।
हाँ, वो इसे न तो जरूरत से ज्यादा आसान बनाते हैं, न ही इतना तकनीकी कि कोई समझ ही न पाए। तो कह सकते हैं कि इस सफर के लिए वे एक बेहतरीन साथी हैं।
तो उनकी इन किताबों का निचोड़ क्या है? जैसा हमने कहा, हिगिन्स का मुख्य उद्देश्य ये दिखाना है कि संख्याएं गिनती के मोहरों से कहीं बढ़कर हैं। एक किताब इस बात पर जोर देती है कि गणित एक तरह से ब्रह्मांड की भाषा है। ये वो पैटर्न और रिश्ते उजागर करती है जो शायद इंसानी दिमाग से स्वतंत्र अपने आप में मौजूद हैं।
अच्छा, जैसे कि वो पहले से ही थे, हमने बस उन्हें देखा।
हाँ, कुछ वैसा ही। वहीं दूसरी किताब संख्याओं की कहानी को इंसानी दिमाग की उपज और जरूरत के नजरिए से देखती है। ये दिखाती है कि कैसे हमने अपनी बढ़ती हुई जटिल समस्याओं को हल करने के लिए नए नए तरह के नंबर ईजाद किए।
जैसे
नेगेटिव नंबर या वो अजीब से लगने वाले इमेजिनरी नंबर। और कमाल की बात यह है कि जितना हम अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट सोचते गए, उतना ही दुनिया को समझने की हमारी व्यावहारिक क्षमता बढ़ती गई।
वाह, ये तो उल्टा लगता है पर दिलचस्प है। तो दोनों किताबों का लक्ष्य एक ही है?
हाँ, लक्ष्य एक ही है, संख्याओं की छुपी हुई गहराइयों, उनके पीछे के इतिहास, उनकी बनावट की खूबसूरती और हमारी दुनिया में उनकी अहमियत को सामने लाना।
और ये सिर्फ गणित के छात्रों के लिए नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो थोड़ा भी उत्सुक है, भले ही स्कूल में गणित उन्हें डरावना लगता हो। मुद्दा ये समझने का है कि संख्याएं असल में हैं क्या और वे क्यों इतनी मायने रखती हैं।
तो मूल तर्क ये उभरता है कि गणित कोई धूल खाती पुराने नियमों की किताब नहीं है, बल्कि एक जिंदा गतिशील क्षेत्र है।
सही कहा, जो समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ता है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया और खुद अपनी सोचने की प्रक्रिया दोनों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।
चलिए, तो फिर कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, गिनती और शून्य से। सोचिए वो पहला इंसान जिसने तीन भेड़ों को देखकर सिर्फ भेड़ 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 नहीं कहा।
हाँ, बल्कि तीन का एक अलग विचार समझा। ये चीजों से उनके गुण जैसे कि संख्या को अलग करने की एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग थी।
बिल्कुल, और अलग अलग सभ्यताओं ने गिनती के अपने तरीके विकसित किए होंगे, है ना?
हाँ, किसी ने उंगलियों का इस्तेमाल किया, किसी ने पत्थर या निशान का, लेकिन जो सिस्टम आज हम पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, हिंदू अरदी प्रणाली, वो क्रांतिकारी साबित हुई।
क्यों, उसमें क्या खास था?
इसकी दो बड़ी वजह थी। पहली, स्थान मूल्य यानी पोजिशनल नोटेशन। मतलब 23 में 2 का मतलब सिर्फ 2 नहीं बल्कि 2 दहाई यानी 20 है। अंक कहाँ बैठा है इससे उसका मान तय होता है। ये बहुत शक्तिशाली विचार था।
और दूसरी?
दूसरी शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण खोज थी, शून्य यानी 0 का आविष्कार। शून्य सिर्फ कुछ नहीं या खाली जगह भरने का निशान नहीं था, जैसा कुछ पुरानी प्रणालियों में था।
अच्छा, तो क्या था?
इसे बाकायदा एक संख्या माना गया अपने आप में, एक नंबर विद इट्स ओन राइट्स। ये एक क्रांतिकारी विचार था जिसने गणना को बेहद आसान बना दिया और बीजगणित यानी एल्जेब्रा जैसे क्षेत्रों के लिए दरवाजे खोल दिए।
यहीं से प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, जिनसे हम गिनते हैं, का सफर सही मायनों में शुरू हुआ।
हाँ, पर इंसानी जरूरतें बढ़ती गईं और जल्द ही पता चला कि सिर्फ गिनती वाली संख्याएं काफी नहीं हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आईं जहां ये संख्याएं कम पड़ गईं।
जैसे कि?
मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास 3 रुपए हैं और आपको 5 रुपए चुकाने हैं तो हिसाब कैसे रखें? 3-5 का जवाब प्राकृतिक संख्याओं में तो था ही नहीं।
हाँ, ये तो दिक्कत है। तो फिर क्या हुआ?
इसी तरह की जरूरतों ने, जैसे कर्ज का हिसाब रखना या समुद्र तल से नीचे की गहराई नापना या शून्य से नीचे तापमान बताना, इन सब ने जन्म दिया ऋणात्मक संख्याओं यानी नेगेटिव नंबर्स को, जैसे -1, -2, -3।
अच्छा, तो नेगेटिव नंबर्स जरूरत से पैदा हुए।
बिल्कुल, अब हमारे पास संख्याओं का एक बड़ा परिवार था। प्राकृतिक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं, इन सबको मिलाकर बने पूर्णांक यानी इंटीजर्स। ये घटाव जैसी क्रियाओं के लिए ज्यादा मुकम्मल थे।
पर क्या ये काफी थे?
नहीं, फिर एक और चुनौती आई बंटवारे की। अगर 5 रोटियां 2 लोगों में बांटनी हो तो 5 को 2 से भाग देने पर पूर्णांक तो नहीं मिलता।
हाँ, 2.5 मिलता है, जो पूर्णांक नहीं है।
सही कहा। चीजों को बराबर बांटने या और ज्यादा बारीक नापतोल करने की जरूरत ने जन्म दिया भिन्नों यानी परिमेय संख्याओं को।
ये वो संख्याएं हैं जिन्हें हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू शून्य नहीं है, जैसे 12, 33 या -52।
हाँ, और एक समय ऐसा लगा कि शायद इन परिमेय संख्याओं ने संख्या रेखा यानी नंबर लाइन के हर बिंदु को भर दिया होगा, कोई जगह खाली नहीं बची होगी।
पर ऐसा था नहीं, और यहीं गणित के इतिहास का सबसे नाटकीय मोड़ आता है।
हाँ, बताइए।
प्राचीन यूनानियों, खासकर पाइथागोरस और उनके अनुयायियों का पक्का विश्वास था कि ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ पूर्ण संख्याओं और उनके अनुपातों यानी परिमेय संख्याओं से बना है।
उनका मानना था कि हर लंबाई, हर माप को 2 पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सब कुछ संख्या है, ये उनका मूल मंत्र था।
लेकिन फिर उन्हीं के बीच किसी ने एक चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने एक साधारण सा वर्ग यानी स्क्वायर लिया, जिसकी हर भुजा की लंबाई 1 इकाई थी।
ठीक है।
पाइथागोरस प्रमेय से उसका विकर्ण यानी डायगोनल निकाला, जिसकी लंबाई √2 होती है। और फिर उन्होंने पाया कि इस लंबाई √2 को किसी भी हालत में 2 पूर्णांकों के अनुपात PQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता।
क्या बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी भिन्न √2 के बराबर नहीं हो सकता।
हाँ, चाहे आप कितने भी बड़े पूर्णांक ले लें। सोचिए, ये उनके लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। उनका पूरा विश्व दृष्टि हिल गया।
जाहिर है, एक ऐसी लंबाई जो सामने दिख रही है, जिसे नापा जा सकता है, वो उनकी संख्या प्रणाली में फिट ही नहीं हो रही थी।
ये खोज थी अपरिमेय संख्याओं की, इरेशनल नंबर्स की, ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसने गणित की नींव हिला दी।
इस खोज ने हमें वास्तविक संख्याओं, रियल नंबर्स की अवधारणा तक पहुंचाया। वास्तविक संख्याएं वो सभी संख्याएं हैं जो एक सतत संख्या रेखा पर किसी न किसी बिंदु से मेल खाती हैं। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल हैं।
हाँ, जैसे परिमेय में 12, 3 और अपरिमेय में √2, π, जो किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है।
और यूलर की संख्या ई, जो विकास और चक्रवृद्धि ब्याज जैसी प्रक्रियाओं में दिखती है। ये भी प्रसिद्ध अपरिमेय संख्याएं हैं।
और सबसे हैरान करने वाली बात, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। वे बेशुमार हैं, मतलब ज्यादातर बिंदु अपरिमेय हैं।
कमाल है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। गणितज्ञों के सामने एक और पहेली आई। समीकरण हल करते समय वे ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां उन्हें किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालना पड़ा, जैसे √-1।
हाँ, ये तो मुश्किल है। वास्तविक संख्याओं में तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका वर्ग करने पर -1 आए, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक या शून्य होता है।
बिल्कुल, सदियों तक इसे एक असंभव निरर्थक चीज माना गया।
फिर धीरे धीरे, खासकर 16वीं सदी में, इटली के गणितज्ञों जैसे कार्डानो और बॉम्बेली ने घन समीकरणों यानी क्यूबिक इक्वेशंस को हल करते समय पाया कि अगर वो √-1 को एक प्रतीक,
मान लीजिए आई, इमेजिनरी यूनिट यानी काल्पनिक इकाई,
हाँ, आई की तरह इस्तेमाल करें, तो वे कुछ मुश्किल समीकरणों के वास्तविक हल तक पहुंच सकते हैं। ये अजीब था।
शुरुआत में इसे सिर्फ एक गणितीय चाल या काल्पनिक चीज माना गया जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, नाम ही काल्पनिक पड़ गया।
लेकिन 18वीं-19वीं सदी में कार्ल फ्रेडरिक गॉस जैसे महान गणितज्ञों ने इसे एक नई क्रांतिकारी दृष्टि से देखा।
उन्होंने क्या किया?
उन्होंने सोचा, क्यों ना संख्याओं को सिर्फ एक रेखा पर देखने के बजाय एक समतल सतह यानी प्लेन पर देखें। उन्होंने सम्मिश्र तल यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन की कल्पना की।
कॉम्प्लेक्स प्लेन, वो क्या होता है?
इसमें हर सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, को a+bi के रूप में दर्शाया जाता है। ए वास्तविक हिस्सा है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होता है, और बी काल्पनिक हिस्सा जो वर्टिकल एक्सिस पर।
अच्छा, तो दो आयामों में फिर?
और इस ज्यामितीय नजरिए से एक अद्भुत बात सामने आई। पता चला कि किसी संख्या को आई से गुणा करना असल में उस संख्या को सम्मिश्र तल पर 90 डिग्री घुमाने जैसा है।
क्या? आई से गुणा करना मतलब 90 डिग्री घुमाना? ये कैसे?
हाँ, ये काल्पनिक संख्या अचानक घूमने यानी रोटेशन, तरंगों यानी वेव्स, और दोलनों यानी ऑसिलेशंस का वर्णन करने का एक शक्तिशाली जरिया बन गई।
सोचिए जरा, जो चीज सिर्फ एक समीकरण हल करने की ट्रिक लगती थी, वो भौतिकी और इंजीनियरिंग की असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए अनिवार्य बन गई।
हाँ, आज सम्मिश्र संख्याएं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, क्वांटम मैकेनिक्स और यहाँ तक कि हवाई जहाज के पंखों के डिजाइन तक में इस्तेमाल होती हैं।
ये अमूर्त सोच की जबरदस्त ताकत का एक शानदार उदाहरण है, कैसे एक पूरी तरह काल्पनिक लगने वाली चीज इतनी व्यवहारिक साबित हुई।
बिल्कुल, चलिए अब पूर्णांकों की दुनिया में वापस आते हैं और उनके मूलभूत कणों की बात करते हैं। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स।
हाँ, प्राइम नंबर्स, ये एक से बड़ी वो संख्याएं हैं जो सिर्फ एक और खुद से ही पूरी तरह भाग होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13।
सही, और बाकी सभी पूर्णांक एक से बड़े इन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से बने हैं।
और अंकगणित का मौलिक प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है, हर पूर्णांक एक से बड़ा का अपना एक अनूठा अभाज्य गुणनखंड DNA होता है, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन।
जैसे 6 सिर्फ 2×3 है और किसी तरह से नहीं।
हाँ, ये अभाज्य संख्याएं मानो संख्याओं की दुनिया के परमाणु यानी एटम्स हैं जिनसे बाकी सब कुछ बना है।
लेकिन इनकी बनावट जितनी सरल लगती है, इनका व्यवहार उतना ही रहस्यमयी है। संख्या रेखा पर ये कहां कहां प्रकट होंगी, इसका कोई आसान पैटर्न नहीं दिखता।
हाँ, ये बहुत अनियमित ढंग से फैली हुई लगती हैं। 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर सीधा 11, गैप बढ़ता घटता रहता है।
फिर भी गणितज्ञों ने इनमें गहरे पैटर्न खोजे हैं। यूक्लिड ने तो ईसा से 300 साल पहले ही साबित कर दिया था कि अभाज्य संख्याएं अनंत हैं, ये कभी खत्म नहीं होती।
और कई पहेलियां आज भी अनसुलझी हैं, जैसे गोल्डबैक अनुमान। क्या हर सम संख्या 2 से बड़ी को 2 अभाज्य संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 4 = 2+2, 6 = 3+3, 8 = 3+5?
हाँ, गणितज्ञ सदियों से कोशिश कर रहे हैं पर इसे कोई साबित नहीं कर पाया है। ये दिखाता है कि प्राइम नंबर्स कितने रहस्यमयी हैं।
पर इन रहस्यमयी संख्याओं का एक बहुत ही ठोस और महत्वपूर्ण आधुनिक इस्तेमाल है, क्रिप्टोग्राफी यानी कूट लेखन।
अच्छा, वो कैसे?
हमारी ऑनलाइन दुनिया की सुरक्षा काफी हद तक इसी बात पर निर्भर करती है कि दो बहुत बड़ी अभाज्य संख्याओं को गुणा करना तो कंप्यूटर्स के लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको सिर्फ उनका गुणनफल बता दिया जाए तो उससे वापस उन दो मूल अभाज्य संख्याओं को खोजना बेहद बेहद मुश्किल है, लगभग नामुमकिन आज के कंप्यूटर्स के लिए।
अच्छा, तो हमारी ऑनलाइन बैंकिंग, सुरक्षित संदेश, ये सब इन्हीं संख्याओं के परमाणुओं के रहस्य पर टिके हैं?
जी हाँ, वाह, ये तो वाकई कमाल है कि गणित की इतनी गहरी और पुरानी पहेलियां हमारी आज की डिजिटल जिंदगी को सुरक्षित रखती हैं।
बिल्कुल। अच्छा, हिगिन्स सिर्फ इन अलग अलग तरह की संख्याओं की कहानी नहीं बताते, वे प्रकृति और कला में छिपे गणितीय पैटर्न पर भी जोर देते हैं।
हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है, जैसे फिबोनाची अनुक्रम यानी फिबोनाची सीक्वेंस, 1, 1, 2, 3, 5, 8, जहाँ हर अगली संख्या पिछली दो का जोड़ होती है।
ये अनुक्रम हमें कहाँ दिखता है?
यह हमें फूलों की पंखुड़ियों की संख्या में, अनानास के छिलके के पैटर्न में, शंखों के घुमावदार आकार और पेड़ों की शाखाओं के फूटने के तरीके में दिखाई देता है। प्रकृति में गणित छिपा है।
और सुनहरा अनुपात यानी गोल्डन रेशो, जो फिबोनाची से जुड़ा है, उसे अक्सर कला और वास्तुकला में खूबसूरती और संतुलन से जोड़ा जाता रहा है।
हाँ, समरूपता यानी सिमेट्री और अनुपात यानी प्रोपोर्शन जैसे ज्यामितीय सिद्धांत इमारतों को स्थिरता और देखने में सुंदरता देते हैं। तो गणित सिर्फ सही गलत जवाबों का खेल नहीं, इसमें एक तरह की सुंदरता भी है।
सही का। तो इन सारी बातों से कुछ मुख्य विषय या संदेश क्या उभरते हैं? मेरे लिए पहला और सबसे बड़ा संदेश यह है कि गणित वाकई एक सार्वभौमिक भाषा है,
यूनिवर्सल लैंग्वेज।
हाँ, ये हमारी संस्कृति, हमारी भाषा से परे हैं। 2+2=4 भारत में भी सच है और ब्राजील में भी। ये वास्तविकता के कुछ ऐसे सच बताती है जो शायद हर जगह हर किसी के लिए एक जैसे हैं।
और ये दुनिया भर में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों को एक दूसरे से संवाद करने और मिलकर समस्याएं सुलझाने में मदद करती है। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी भाषाएं और संस्कृतियां हैं, गणित के सिद्धांत हमें एक साझा जमीन देते हैं।
बिल्कुल। दूसरा मुख्य विषय है पैटर्न की सुंदरता। जैसा हमने फिबोनाची या सुनहरे अनुपात में देखा, गणित सूखा या उबाऊ हो ऐसा जरूरी नहीं।
हाँ, उसमें भी सौंदर्य है।
प्रकृति में, कला में, संगीत में दिखने वाले ये पैटर्न हमें एक तरह का बौद्धिक और सौंदर्य आनंद दे सकते हैं। स्कूलों में सिर्फ सवाल हल करवाने के बजाय गणित की इस खूबसूरती की तरफ भी ध्यान दिलाना जरूरी है।
सही बात है। हमारे यहाँ की पारंपरिक कलाओं जैसे रंगोली या मंदिरों की नक्काशी में भी तो ज्यामिति और समरूपता का अद्भुत इस्तेमाल दिखता है।
बिल्कुल। तीसरा, गणित एक बेहद व्यावहारिक औजार है। ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर फैसले लेने के लिए ये बहुत काम आ सकता है।
जैसे कि
चाहे वो अपने पैसों का हिसाब किताब हो, लोन का ब्याज समझना हो, या फिर खबरों में दिए आंकड़ों का मतलब निकालना हो, गणितीय साक्षरता हमें ताकत देती है।
हाँ, भारत में जहाँ बहुत से लोग पहली बार बैंकिंग या डिजिटल दुनिया से जुड़ रहे हैं, वहाँ चक्रवृद्धि ब्याज या ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए थोड़ी गणितीय समझ बहुत मददगार हो सकती है।
चौथा है अमूर्तता की ताकत। ये थोड़ी विरोधाभासी बात लगती है, लेकिन हमने देखा कि कैसे शून्य, नेगेटिव नंबर या आई जैसी अमूर्त अवधारणाओं ने हमें असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के ज्यादा शक्तिशाली तरीके दिए।
हाँ, कभी कभी सीधे हल पर कूदने के बजाय समस्या के बारे में ज्यादा अमूर्त ढंग से सोचना ज्यादा कारगर होता है।
और पांचवां, वो गहरा दार्शनिक सवाल, क्या संख्याएं खोजी जाती हैं या आविष्कार की जाती हैं? क्या वो पहले से मौजूद थीं और हमने बस उन्हें पहचाना, या वे इंसानी दिमाग की रचना है?
हाँ, ये डिस्कवरी वर्सेस इन्वेंशन वाला सवाल।
हिगिन्स यहाँ शतरंज के खेल अबला अच्छा उदाहरण देते हैं। कहते हैं, शतरंज के नियम तो हमने बनाए हैं, लेकिन उन नियमों के दायरे में जो लाखों करोड़ों सुंदर और जटिल खेल खेले जा सकते हैं, वो हमने नहीं बनाए। वे उन नियमों के भीतर ही छुपे हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है।
अच्छा,
शायद गणित भी कुछ ऐसा ही है। नियम हमने बनाए, पर उनसे निकलने वाले नतीजे अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। इस पर कोई पक्का जवाब नहीं है, पर सोचना दिलचस्प है।
हाँ, वाकई हिगिन्स की किताबों से कुछ ऐसे विचार वाकई याद रखने लायक हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। पहला, आपने बताया, संख्याएं सिर्फ प्रतीक नहीं हैं, वे असलियत की बनावट में झांकने वाली खिड़कियां हैं।
हाँ, मतलब गणित सिर्फ हिसाब नहीं बल्कि दुनिया कैसे काम करती है इसे समझने का एक जरिया है। दूसरा, गणितीय साक्षरता का मतलब फॉर्मूला रटना नहीं है, इसका मतलब है मात्राओं और उनके रिश्तों के बारे में साफ साफ सोचना सीखना।
ये स्कूलों के लिए बहुत जरूरी बात है। असली समझ तकनीकों को रटने से नहीं बल्कि तर्क करने की क्षमता विकसित करने से आती है।
बिल्कुल। तीसरा विचार जो संख्याओं के विकास को दिखाता है, हर नई तरह की संख्या प्रणाली जैसे नेगेटिव या कॉम्प्लेक्स नंबर एक जरूरत को पूरा करने के लिए बनी। वे उन समस्याओं को हल करने के लिए आईं जिन्हें पुरानी संख्याएं हल नहीं कर सकती थी।
ये दिखाता है कि गणित कैसे समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ा है। ये कोई स्थिर चीज नहीं है।
और चौथा, अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं अंकगणित के परमाणु हैं। नियम सरल हैं, पर उन्हें पूरी तरह समझना हैरतअंगेज रूप से जटिल है।
ये गणित की खूबी है। साधारण से दिखने वाले नियमों में भी गहरी जटिलता और रहस्य छिपे हो सकते हैं।
ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत रोचक है, लेकिन सवाल वही है, इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? हम इन विचारों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?
एक सीधा इस्तेमाल तो निजी वित्त यानी पर्सनल फाइनेंस में है। चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, ये समझना बहुत जरूरी है, चाहे आप बचत कर रहे हों या लोन ले रहे हों।
हाँ, आजकल SIP वगैरह की बहुत बात होती है, उसमें कंपाउंडिंग ही तो काम करती है।
बिल्कुल। संभावना यानी प्रोबेबिलिटी और आंकड़ों की थोड़ी समझ हमें बीमा पॉलिसी चुनने या निवेश के जोखिम को समझने में मदद करती है। यह हमें सिर्फ विज्ञापन देखकर फैसला करने से बचा सकती है।
सही बात है। और हमारी डिजिटल दुनिया को ही देखिए, अभाज्य संख्याओं और क्रिप्टोग्राफी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी ऑनलाइन बैंकिंग या व्हाट्सएप चैट कैसे सुरक्षित रहती हैं।
हाँ, ये जानना हमें थोड़ा ज्यादा आश्वस्त और जागरूक बनाता है कि तकनीक कैसे काम करती है। ये कोई जादू नहीं, इसके पीछे गणित है।
सोचने के तरीके पर भी असर पड़ता है। जैसे हमने देखा कि कैसे एक तरह की संख्याओं की सीमाएं दूसरे तरह की संख्याओं के आविष्कार का कारण बनी। ये हमें सिखाता है कि जब हम किसी समस्या में फंस जाएं तो शायद हमें अपने सोचने का दायरा बढ़ाने की जरूरत है।
हाँ, कुछ नए औजार या नए नजरिए अपनाने की जरूरत है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अहम सबक है।
और हाँ, मीडिया साक्षरता के लिए भी ये बहुत जरूरी है। आजकल हमें हर तरफ से आंकड़ों की बौछार झेलनी पड़ती है, चुनाव के सर्वे, किसी प्रोडक्ट की सफलता के दावे, स्वास्थ्य से जुड़ी स्टडीज।
बिल्कुल।
आंकड़ों और संभावना की बुनियादी समझ हमें ये पहचानने में मदद करती है कि कहीं हमें बढ़ा चढ़ाकर या तोड़ मरोड़ कर तो कुछ नहीं बताया जा रहा। हम ज्यादा सवाल पूछने वाले और जागरूक नागरिक बन सकते हैं।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे अहम बात ये निकलती है कि गणित को सिर्फ कुछ बुद्धिमान लोगों या विशेषज्ञों का विषय मानकर डरना नहीं चाहिए। ये हमारी दुनिया, हमारे अनुभव और प्रकृति का एक हिस्सा है।
हाँ।
अगर हम इसे सही नजरिए से एक कहानी की तरह, एक भाषा की तरह देखें तो ये सुलभ, रचनात्मक और यहाँ तक कि सुंदर भी हो सकता है।
मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे शून्य या आई जैसे पूरी तरह से अमूर्त इंसानी दिमाग की उपज लगने वाले विचार असल दुनिया को समझने और उसे बदलने में इतने ज्यादा शक्तिशाली और व्यवहारिक साबित हुए हैं।
हाँ, ये वाकई कमाल है।
ये दिखाता है कि गणित सिर्फ सही उत्तर ढूंढना नहीं है, बल्कि ये सही सवाल पूछना और दुनिया को देखने का, सोचने का एक अनोखा और शक्तिशाली तरीका विकसित करना भी है। ये इंसानी जिज्ञासा और रचनात्मकता की एक कमाल की कहानी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।